ध्यायानम् ॐ श्रीं नमो भ्रौरे सर्वसाहूनम् ॐ श्रीं नमो अरहन्तानम् ॐ श्रीं नमो सिद्धानम् ॐ श्रीं नमो आयर्याणम् ॐ श्रीं नमो उवर्चायाणम् ॐ श्रीं नमो लोये सर्वसाहूनम् नेतो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलां च संलेशिं पठमं भवै मङ्गलम् पठमं भवै मङ्गलम्
पर्युषण का प्रथम दिन है भगवान सॉरी दूसरा दिन भगवान महावीर की से कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं।
जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान, पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्रभु मंत्राक्षर प्यारा, मेरी सरल हरी पर, मेरी सरल हरी पर, मुझे कही तान। जय महावीर भगवान, राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता, ओ प्रभु सिद्धि सदन नेता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, मिले सकल व्यवधान। जय महावीर भगवान, अनेकांत दाता, अनुपम सुख दाता, ओ प्रभु अनुपम सुख दाता, जन्म जन्म के बंधन, जन्म जन्म के बंधन तोड़े कर संधान। जय महावीर भगवान, आदि की माया मिटे प्रेत छाया, ओ प्रभु मिटे प्रेत छाया, आत्मशक्ति जग जाए, आत्मशक्ति जग जाए, जग भी बने महान। जय महावीर भगवान, भक्ति भरा मन मेरा, तोड़ रहा घेरा, ओ प्रभु तोड़ रहा घेरा, तन्मय बन कर तुलसी, भगवान जय महावीर भगवान जय महावीर
आराध्य के श्री चरणों में अभिवंदना वंदनीय समीची हम संवत्सरी पर्व मना रहे हैं और संवत्सरी पर्व में भगवान महावीर को तो याद करते ही करते हैं। सो हम कल्प सूत्र का वाचन करते हैं, प्राय संवत्सरी में ये परंपरा चल रही है। कल्प सूत्र भगवान महावीर का जीवन है, किंतु कल्प सूत्र की जो परंपरा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये बाद का काल है। क्योंकि कल्प सूत्र की रचना जो हुई है वो भद्रबाहु स्वामी के समय में हुई है, भद्रबाहु ने की है ऐसा उल्लेख मिलता है। किंतु उसके पहले का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें भगवान महावीर के जीवन को बताया गया है? एनी आइडिया? आचारंग सूत्र। सैटरडे को समी की क्लास भी दे रहे हैं जिसमें आचारंग सूत्र का ही वाचन हो रहा है। तो आचारंग सूत्र का जो 9th चैप्टर है, आचारंग सूत्र अपने जैन आगमों में प्रथम आगम माना जाता है। द फर्स्ट ऑफ इट आगम इज आचारंग सूत्र। तो 9th चैप्टर जो है वो पूरे भगवान के जीवन को ही लेकर के प्रस्तुत किया गया कि भगवान ने क्या जिया और क्या दिया। दो चीज होती है, आप क्या देते हो और क्या करते हो। भगवान का जीवन कैसा था, उन्होंने जीवन में क्या साधना में क्या किया वो दर्शाया गया है, और उन्होंने क्या दर्शन लिया, उनकी उनका चिंतन क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने किस बात को जीने के लिए प्रेरित किया वो दिया गया है। तो थोड़ा सा उसी संदर्भ में चर्चा करें कि भगवान महावीर ने जो साधना की। अब हम संवत्सरी क्यों मना रहे हैं, साधना करने के लिए मना रहे हैं। अब प्रश्न है कि भाई कल जो दिन बीता आपका, तो आपने क्या स्पेशल साधना की उसमें? साधना तो करनी थी आपको, व्हाट डिड यू डू स्पेशल? आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन स्पॉट। प्रतिक्रमण किया, गुड। और स्वाध्याय किया, किसी ने उपवास किया, तो हमने किसी न किसी माध्यम से साधना करने का प्रयत्न किया। साधना के भगवान के क्या रूप थे, तो पंचाचार की साधना का विधान जैन धर्म में है। पंचाचार में 5 आचार हैं। आचार जैनिज्म का कोर है, यानी कंडक्ट, मतलब हम क्या आचार पालन करते। तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। सबसे पहले ज्ञानाचार, हम ज्ञान की साधना करें। जब आप स्वाध्याय करते हैं तो क्या करते हैं, ज्ञान करते हैं। अब ज्ञान क्या है, जो शब्द मैं बोल रही हूँ और जिस शब्द को आप सुन रहे हो वो ज्ञान है, उसका मीनिंग जो समझते हैं वो ज्ञान है। ज्ञान के दो रूप हैं, जैसे जैन धर्म में ये माना जाता है कि जो सम्यक्त्री का ज्ञान है वो ज्ञान है, मिथ्यात्वी का ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। इसके पीछे कारण क्या रहा, भाई एक सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि का मतलब तो समझते हैं, जिसकी सोच सही है, जिसका जिसकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि सत्य को जो सही रूप से समझता है, जिसने सत्य को सही रूप से समझा है और उसके पास ज्ञान है, और जिसने सत्य को सही रूप से नहीं समझा है उसके पास भी ज्ञान है। जैसे दूध है, एक दूध की बोतल में दूध है और एक शराब की बोतल में दूध है, दूध तो दूध ही है फिर भी फर्क क्यों। सम्यक दृष्टि के ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को हम अज्ञान कहते हैं। कारण क्या, अलग अलग कारण बताए गए हैं, उसमें एक कारण ये दिया गया है कि जो मिथ्या दृष्टि होता है वो अपने ज्ञान को आचार तक नहीं ले पाता, ले जा पाता। He does not implement the knowledge and put it into practice. कहा भी गया है, जैनिज्म में एक सूत्र है वो आगमों में, नानस सार मायारो, भाई जो आचार है वो वास्तव में ज्ञान का सार है। तो जब हम कहते कि ज्ञान आराधना करनी है, ज्ञान का आचार, तो ज्ञान हम प्राप्त करें, केवल शब्द ही ज्ञान नहीं है। वैसे तो आगम अपने आप में जो शास्त्र है वो भी ज्ञान है, वो ज्ञान का माध्यम है, भगवान की जो वाणी है वो उसमें लिखी हुई है। बट अल्टीमेटली वॉट यू रिसीव, वॉट यू अंडरस्टैंड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज, सेकेंड स्टेप है उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो भगवान के जो शिष्य रहे हैं, जैसे गणधर गौतम, गौतम स्वामी थे, 11 गणधर भगवान के प्राइम शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे। एंड दो वो शिष्य ऐसे थे जिनको ज्ञान, मतलब 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। अब 14 पूर्व का ज्ञान की जब परिभाषा करते हैं तो बताते हैं कि कितना ज्ञान है, कि हजारों हाथी हैं, वो पूरे समुद्र के पानी को इंक बना करके उस जितना भी लाइक फॉरेस्ट है उसकी उसकी पेन बन जाए, उतना अगर लिखा जाए तब भी वो ज्ञान कम है। मतलब वो कम मटेरियल कम है उस ज्ञान को लिखने के लिए। प्रश्न ही खड़ा होता है कि इतना ज्ञान है तो उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए कितना चाहिएगा टाइम, ये उम्र में तो होगा नहीं। तो फिर गंधर्व ने कैसे कर लिया, उनको कोई स्पेशल गिफ्ट था क्या? वो गिफ्टेड किड्स थे। जैसे कहते हैं ना कि भाई गिफ्टेड जो होता है वो बहुत कुछ एसेंस में जल्दी ग्रहण कर लेता है। मूल है ऐसी विधियां रही हैं, प्राणायाम की ऐसी साधनाएं रही हैं जिससे व्यक्ति बहुत ज्ञान को थोड़े समय ही ग्रहण कर सकता है, उसे जागृत कर सकते हैं। ऐसी भी विधियां रही, जैसे आपको प्रतिक्रमण करने में लाइक 1 घंटा लगता है, राइट? और कोई भी भक्तामर अगर रिवाइज करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट। ऐसी ऐसी विधियां रही हैं कि पूरे के पूरे आगम को अगर रिवाइज करना है तो दे कुड डू इट विद इन लाइक सेकेंड, बिकॉज उनकी मेंटल कैपेसिटीज इतनी बढ़ जाती हैं। तो जब हम ज्ञान की आराधना करने की बात करते हैं, हो सकता है हमको बहुत ज्ञान हो, पूरी की पूरी पोथियां हमने पढ़ ली है, सारे शास्त्र हमने रख लिए हैं, सारे शास्त्रों को हम फटाफट बोल भी सकते हैं, बट फिर भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे। एक साधु थे जिनको ज्ञान आता ही नहीं था, कितना ही उनको बढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए, सिखा दिया जाए, उनको कुछ भी टिकता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना सारा ज्ञान तो मैं कर ही नहीं सकता इस जन्म में। तो वो गुरु के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई गुरु जी हमको कोई 1-2 शब्द बढ़ा दो जिससे कि मेरे को मोक्ष हो जाए, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े आपके ग्रंथ हैं वो कहाँ समझ में आएंगे, मेरे को याद तो रहेंगे नहीं, मैं यहाँ सुनता हूँ, वहाँ कार में बैठने से पहले तो मेरे को मेमोरी लॉस हो जाती कि मैंने क्या प्रवचन सुना। प्रवचन सुनते हैं तब तो याद रहता है, मेमोरी लॉस किसकी होती है, प्रवचन की होती है, किसी फ्रेंड ने कोई बात कही है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वो हमारी रुचि का विषय नहीं रहा। हम सुनते हैं, संतोष करते हैं, हमें अपने आप को खुश करने के लिए नहीं आना है, अपने आप को संतोष देने के लिए नहीं आना है, वास्तव में अध्यात्म की साधना करने के लिए आना है। तो जब तक भीतर में ये स्फूर्णा, ये प्रेरणा नहीं जगेगी कि नहीं मुझे अध्यात्म में ग्रो करना है, आई हैव टू ग्रो फ्रॉम वेयर आई एम, आगे बढ़ना है। हमने ये तो मान लिया कि मोक्ष इस जन्म में नहीं है, किंतु हम ये क्यों मान बैठे कि मोक्ष के पास हम इस जन्म में नहीं जा सकते, हम भगवान के पास इस जन्म में नहीं पहुंच सकते। हमारी जो साधना है वो हमें पल पल मोक्ष की ओर ले जा रही है। तो ये जो भीतर में ये kind of फायर, ये आग होती है ना, एक तो आग जलनी चाहिए कि भाई संवत्सरी आई है और उस संवत्सरी के दौरान मैं अपने में क्या चेंज ला सकता हूँ, क्या नया ऐसा कर सकता हूँ कि जो मैंने पहले नहीं किया है। हम सब में एक तड़प होती है कि आई शुड डू समथिंग विच आई हैव नॉट डन बिफोर, राइट? तो इस हमने पिछली संवत्सरी को भी मनाया था, उसके पहले भी आपने 20-30 संवत्सरी मनाई है, तो हम इस संवत्सरी में ऐसा क्या एक भी कदम आगे बढ़ें जहां हम ये कहें कि वेल मैं हर दिन ये करती हूँ मगर मैंने ये इस बार नहीं किया, या जो मैं नहीं करती हूँ वो मैंने किया। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और वो ही, क्योंकि हम जब स्वाध्याय करने के लिए आते हैं, स्वाध्याय निर्जरा का साधन तो है, प्योरिफिकेशन का साधन है, बट स्वाध्याय अपने आप में एक तो पक्ष है साधना का, ज्ञानाचार। और जब तक दूसरे, जैसे भगवान तत्वार्थ सूत्र में लिखा भी गया है, क्या जो चार मार्ग है मोक्ष के, क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। अब कोई ये कहे कि मैं ज्ञान करते करते ही मोक्ष चला जाऊंगा, हो जाएगा, कब होगा? जब आपका ज्ञान आपकी आत्मा में प्रकट होगा। इंफॉर्मेशन बुक से लेकर मस्तिष्क में पहुंचा वो ज्ञान नहीं है, भीतर में जब ज्ञान प्रकट होने लग जाए तो वास्तव में भीतर में शुद्धि हो, जो भीतर का ज्ञान प्रकट होगा वो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। वो फिर केवल समझने तक का ज्ञान नहीं है, वो आचरण का ज्ञान है। जैसे कभी कभी कोई फिलोसॉफिकल तथ्य आप सुनते हो, राइट? फिर जब घर जाते हैं और जब उसको थॉट करते हैं, कोई सिचुएशन आती है, देन यू रियलाइज दिस इज द ट्रूथ। द मोमेंट देयर इज एन इंटरनल रियलाइजेशन, भीतर में एक क्या आभास होता है, एक अनुभूति होती है कि हाँ यही सच है, वो हो गया हमारा ज्ञान। तो हम ज्ञान की आराधना करें, उसे आत्मसात करने के लिए, उसमें आगे विकास करने के लिए। और भगवान ने ज्ञान के लिए पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, उन्होंने ध्यान किया था। मेडिटेशन वॉज हिज सोर्स ऑफ रियलाइजेशन। और उन्होंने ध्यान किस पे किया? उन्होंने सत्य का ध्यान किया। सत्य क्या है? जो एग्जिस्ट करता है वो सच है, जो सत्य लोक है, जीव है, अजीव है, उन्होंने उस पर ध्यान किया, उन्होंने आत्मा पर ध्यान किया। आचारंग में आता है कि भगवान ने ऊर्ध्व लोक का ध्यान किया, मध्य लोक का ध्यान किया, अधो लोक का ध्यान किया। ही मेडिटेटेड ऑन अपर कॉस्मोस, मिडिल कॉस्मोस एंड लोअर कॉस्मोस। प्रश्न होता है कि भाई ऊपर नीचे और नीचे देखने से क्या है? अभी वो साइंटिस्ट है, वो भी देख रहे हैं, व्हाट अ बिग डील। बिग डील है या नहीं है? इज इट, डज इट मेक एनी डिफरेंस टू सी द अपर, मिडिल एंड द लोअर कॉस्मोस? यस, बिकॉज यू विल नो द ट्रूथ। सॉरी, राइट। वहीं पर वापस सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भी यही चक्कर है कि जो सत्य देखता है, दोनों ही चीज व्यक्ति को वो एक ही चीज दिखती है, मगर लेने वाला उसको कैसा लेता है। भगवान ने जो देखा वो सत्य को समझने के लिए देखा, विश्व के स्वरूप को समझने के लिए देखा। व्हेन वी लुक इनटू आवरसेल्फ, राइट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इंडिविजुअल्स। और जो हम मनुष्य हैं, हम अपने आप को जब देखते हैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट में दुनिया को देखते हैं, राइट? यूजुअली वी आर द सेंट्रल पॉइंट एंड वी लुक इनटू द वर्ल्ड ऑन इन आवर कॉन्टेक्स्ट, कि भाई मैं ऐसे सोचती हूँ ये ऐसा होना चाहिए, या मेरे को ऐसे चाहिए तो ये ऐसा होना चाहिए। सो वी ऑलवेज ट्राई टू रिफ्लेक्ट इन दैट मैनर। बट जब आप दुनिया को देख करके उसमें अपने आप को एक अस्तित्व वाली एक इकाई देखते हो, तो क्या करते हो? विश्व में हमारा क्या एग्जिस्टेंस है उस सत्य को देखते हो, तो वहां अहंकार लुप्त होता है। अभी हम ईगो के साथ देखते हैं कि आई हैव अ वर्ल्ड, आई हैव अ बिजनेस, आई डू दिस, ऑल दीज डिफरेंट लेयर्स विच कम और फैमिली, मेरी ये फैमिली है, मैं ये करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ, मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ, वहां पर भी ईगो है, राइट? तो जो हम अपने आप को सेंट्रल पॉइंट बना करके दुनिया को देखते हैं वो हम ईगो के साथ देखते हैं। जैसे नासा में बहुत सारी रिसर्च होती है, ओ वी लैंडेड ऑन द मून, फिर वो मार्स तक पहुंचना चाहते हैं, वहां क्या है? ज्ञान है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, अहंकार बोल रहा है कि हमने ये किया। तो वास्तव में ज्ञान तब सार्थक है जब हमारा अहंकार लुप्त होना चाहिए। जो आत्मा की ओर लेके जाता है वो ज्ञान ज्ञान है। तो अब प्रश्न होता है कि जब हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो जो सत्य है, भगवान ने सत्य को देखा, दूसरा जो आचार था वो है दर्शनाचार, यानी श्रद्धा। एक छोटी सी घटना है, आई थिंक मैंने पहले भी आपको कही होगी। एक बार खान होती है, खान में से स्लैब निकाले गए, पत्थर निकाला गया। जो पत्थर निकला उसमें से किसी ने कहा कि मुझे तो अपना घर बनाना है, तो उसने अपना घर बनाया और एक पत्थर को उसने अपने घर के चौकट पे लगा दिया। वो आप उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट वो राइट, तो वो होता है। तो वहां पर आप क्या करते हो, अपने जूते छोड़ते हो। दूसरे इंसान ने उस एक पत्थर को अपने किचन में लगाया, तो किचन में जहाँ कुकिंग होती है वो था, वहां जूते जाते हैं क्या? नहीं जाते, पत्थर पत्थर ही है। अब तीसरे इंसान ने उस पत्थर को भगवान का रूप दिया और मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि खान से निकालने वाला एक ही व्यक्ति ने तीन जब पत्थरों को निकाला, सत्य क्या है और श्रद्धा क्या है? जहां हम घर के बाहर जो स्लैब रखा है वहां तो जूते छोड़ सकते हैं, किचन में जूते अलाउड नहीं है, सेम पीस है, सेम मार्बल है, और टेम्पल में आप फूड फूड भी अलाउड नहीं करते हो। किचन में फूड अलाउड है, टेम्पल में फूड भी अलाउड नहीं है। क्यों? देयर इज अ चेंज फ्रॉम व्हाट इट वेंट थ्रू। तो जो पत्थर का पत्थर होना ये सत्य है, किंतु पत्थर के ऊपर जूते अलाउड नहीं है या फूड नहीं अलाउड है, ये क्या है? ये हमारी श्रद्धा है। तो सत्य का मतलब होता है यथार्थ को देखना, श्रद्धा है हमारी उसके प्रति लगने वाला रिलेशनशिप। तो हम श्रद्धा का जीवन जीते हैं, किंतु श्रद्धा और सत्य के बीच में अगर भेद है, डिफरेंस है, देन वी हैव टू फिल इन द गैप। जब तक हमारा सत्य और श्रद्धा एक नहीं हुआ, हमारी श्रद्धा सत्य के साथ नहीं जुड़ी, वो सम्यक श्रद्धा नहीं हो सकती। तो हम दूसरा जो भगवान ने साधना का उपक्रम बताया है वो दर्शनाचार, हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करें, हम सत्य को और श्रद्धा को एक बना करके चलें। सत्य क्या है? जीवन में कोई आता है वो अकेला आता है, राइट? और आप जाओगे तब साथ में क्या क्या चलेगा? सारा दिन भर का आपने जॉब किया है, इतना सारा कमाया है, साथ में नहीं जाएगा क्या? एक सेठ ने कहा कि भाई, राजा था उसको एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन के लिए एक संत उनके पास गए। उन्होंने एक संत ने एक सुई दी राजा को कि कहा मुझे ये अगले जन्म में दे देना। तो उसने कहा कि ऐसी सुइयां तो हजारों हैं, सुई इज नॉट अ बिग डील, बट प्रॉब्लम ये है कि अगले जन्म में जाएगा क्या कुछ? तो फिर उसने राजा से कहा कि जब आपके अगले जन्म में कुछ भी नहीं जाएगा तो आप इतना माता पिता क्यों कर रहे हो? तो आपको मैं जॉब छोड़ करके घर बैठने के लिए नहीं बोल रही हूँ, साधु बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एन इल्यूशनरी वर्ल्ड। श्रद्धा का मतलब ये होता है कि जो सत्य है उसे समझना। सत्य ये कि हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, साथ में कुछ जाने वाला नहीं। हमारे जो विचार है ना वो भी नहीं चलता, जैन धर्म है वो भी नहीं चलेगा। चलेगा क्या? हमारा आचार, हमारी जो पवित्रता है सोच की या अपवित्रता है। वॉट यू थिंक गुड एंड डू गुड और थिंक बैड और डू बैड, दैट वुड गो विथ यू। वो अकाउंटिंग, उसमें कोई हेर पर नहीं होती, उसमें कोई आप यहाँ के अकाउंट्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि भाई हम सब कुछ हो सकता है, इन शॉर्ट आप ज्यादा जानते हो हमसे। बट उस केस में देर इज नो हाइड एंड सीक। कर्म में जो जस्टिस का प्रावधान है, देर इज नथिंग लाइक इनजस्टिस देयर, देर इज नथिंग लाइक ब्राइबिंग देयर, देर इज नथिंग लाइक हाइडिंग देयर। तो जो हम जीवन जीते हैं वो सत्य का जीवन जिए, वही हमारी श्रद्धा बने। हम अकेले आए हैं, जैसे एक सूक्त है आगम में भगवान ने कहा है कि नसाम अहम नो भी अहम पिति से, वो मैं नहीं हूँ और मैं वो नहीं है। अभी जो हम जिस सत्य को समझते हैं, जिस पे हमारी श्रद्धा है, वो ये है कि भी पैसे होंगे तो बुढ़ापे में काम आएगा, ये हमारी श्रद्धा है। पैसे के प्रति श्रद्धा है, संबंध के प्रति श्रद्धा है, भाई पत्नी है या पति है वो बुढ़ापे में सेवा करेंगे, बच्चे तो अब समझ लिए, टाइम लगा होगा उसको भी समझने में, बट अब ये तो समझ में आ गया कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, नो क्लू, बट इस पे जरूर श्रद्धा है कि शायद हमारा स्पाउस या पार्टनर है, दैट्स गोइंग टू बी देयर विद मी, बट हु नोज हु इज गोइंग टू लिव फॉर हाउ लॉन्ग। कौन कितना जिएगा, किसकी सांस कितनी बाकी है, किसको पता है? सो मेक श्योर दैट यू मेक अरेंजमेंट फॉर योर सेल्फ. इट्स नॉट काइंड ऑफ फियर. एक स्टूडेंट ने कहा कि जैन धर्म में ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने मृत्यु को से भय नहीं दिखाया, मृत्यु को गले लगाने की बात कही या मृत्यु का सामना करने की बात कही. बहुत सारे ट्रेडिशंस में होता है कि मौत का कॉन्सेप्ट आते ही लाइक दे फियर फ्रॉम इट, दे वांट टू लाइक रन अवे फ्रॉम इट. डॉक्टर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, भाई उसको थोड़ा और जिला दो, चाहे वो ऑक्सीजन दे करके, ब्लड दे करके, वॉट नॉट, दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द पर्सन लिव्स लॉन्गर. और हम बहुत खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, राइट? बट इज दैट, इज दैट आई मीन अ वंडरफुल थिंग? आगमों में कहा कि जब तक शरीर साधना के लिए साथ दें, आप शरीर का साथ दो. बरोबर का लेन देन होता है ना, आज तक वो तो कॉमन चीज है. आई मीन योर बिजनेस माइंडेड पीपल, बराबरी होती है भाई, तुम जितना करोगे हम भी उतना ही करेंगे. मैं क्या बेवकूफ हूँ जो ज्यादा करती रहूंगी या करता रहूंगी? दैट्स अ कॉन्सेप्ट विच वी ऑल कैरी, राइट? हाउ अबाउट इन योर केस ऑफ बॉडी? हम उसको फिर भी पकड़ करके रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं. होल्डिंग इट इन द सेंस अटैचमेंट, मेरापन नहीं छूटता है. तो हम संबंध को सत्य समझते हैं, वास्तव में संबंध असत्य है, क्योंकि उसका शाश्वत अस्तित्व नहीं है. चाहे वो शरीर के साथ संबंध है, या व्यक्ति के साथ संबंध है, या पदार्थ के साथ संबंध है, या पैसे के साथ संबंध है. चाहिए ये सारी चीजें वो समझने की बात है, बट देन वॉन्ट और नीड में अंतर समझना जरूरी है. जैसे एक बच्ची थी तो उसने कहा कि आई नीड दिस, उसको खिलौना था तो उसने कहा कि आई नीड दिस. तो माँ ने उसका कहा कि डोंट से आई नीड दिस, से आई वॉन्ट दिस. छोटी सी बच्ची को मुझे बहुत बढ़िया लगा ये देखने को कि लाइक काइंड ऑफ माँ वाज सो कॉन्शियस टू गिव हर अ ट्रेनिंग उस यंग अवस्था में, कि उसको, उस बच्ची को ये समझ में आया कि वॉन्ट और नीड में डिफरेंस है. हम बड़े हो गए हैं, हमको उस एजुकेशन देने वाला कोई अभी है नहीं, बट अगेन वी नीड टू काइंड ऑफ रियलाइज कि हम अपने नीड्स को और वॉन्ट को कहीं मिक्स तो नहीं कर देते हैं. अपना स्टेटस का इश्यू बना करके, या वी हैव डिफरेंट रीजंस, एक्सक्यूज तो दुनिया में हजारों हैं, उसकी तो कोई कमी है नहीं. तो हम इस सत्य को समझे कि वास्तव में एक पक्षी था, और पक्षी ने देखा कि भाई जो संत महात्मा है, जो सेठ जी है, वो हमेशा संत महात्मा के पास जाते हैं. तो पक्षी ने कहा कि आप हर दिन क्या करते हो वहां जा करके? तो उन्होंने कहा कि बहुत सरस प्रवचन होता है, बहुत आनंद आता है, बहुत जीवन के सत्य जो है वो हमें समझाते हैं. तो उस पक्षी ने कहा कि अच्छा ऐसा है. तो सेठ जी को उस पक्षी ने कहा कि अच्छा ये भी आप उनको पूछ लेना कि मेरा एक प्रश्न है, मैं मुक्त कब होऊंगा? इस प्रश्न, क्योंकि जीवन के गूढ़ सत्य अगर वो बताते हैं, ज्ञानी पुरुष है, तो मेरा भी उत्तर उनके पास होना चाहिए. तो उन्होंने सेठ जी को कहा कि आप ये फाइंड आउट करना इस आंसर, इस प्रश्न का उत्तर, कि मैं संत को पता है कि मुक्त कब होंगे, पक्षी मुक्त कब होएगा? अब सेठ जी को प्रश्न था, तो उसने कह दिया कि हमारे पक्षी ने आपसे ये प्रश्न पूछा है. तो जैसे ही सेठ जी ने प्रश्न पूछा तो संत लुढ़क गए. अब सेठ जी ने लगा कि क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या प्रश्न कर दिया कि संत लुढ़क गए. वो थोड़ा सा डर भी गए, बस चलो वापस लौटे घर. तो उन्होंने कहा, पक्षी ने पूछा कि मेरा उत्तर क्या है? तो उसने कहा, क्या प्रश्न पूछा तुमने? वो तो संत प्रश्न सुनते ही लुढ़क गए. अब पक्षी, सेठ जी तो समझे नहीं, पक्षी को उत्तर मिल गया. उत्तर क्या था? जब तक शरीर के प्रति, शरीर में एक्शन है, तो वो जो सेठ जी है वो उसको जीवित समझेंगे, और जब तक वो जीवित है तब तक वो पिंजरे में बंद है. पिंजरे से मुक्त होना है तो इसका मतलब मौत ही उसे पिंजरे से बाहर ला सकती है. मृत्यु किसकी? शरीर और आत्मा की मृत्यु नहीं, आसक्ति की मृत्यु, प्रवृत्ति की मृत्यु. जो हम एक्शन में जी रहे हैं उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे, करना है करना है करना है, ये भागना और चलती जाती कि ये भी करना है वो भी करना है, हाउ लॉन्ग? और करना तो होगा, आपको करना पड़ेगा, बट अटैचमेंट के साथ करते हैं या करने के लिए करते हैं? भाई इट्स योर जॉब, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ऑब्लिगेशन, यू डू इट फॉर दैट और यू डू इट फॉर द माइंड सेक एंड ईगो सेक। मेरेपन के लिए करते हो या अहंकार के लिए करते हो या करने के लिए करते हैं? तो जब तक उस अटैचमेंट आसक्ति का छुटकारा नहीं हुआ, शरीर के प्रति ममत्व रहा, शरीर में प्रवृत्ति रही, तब तक मुक्ति है क्या? मुक्ति के लिए निवृत्ति जरूरी है। प्रवृत्ति से निवृत्ति हो या नहीं हो, आसक्ति से निवृत्ति जरूरी है। जैसे व्यक्ति ड्रेसेस रखते हो आप, हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी स्टफ यू हैव इन योर हाउस, डू यू लुक एट इट एज अ काइंड ऑफ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? Do you have an attachment? Do you identify yourself with those stuff? ये सोचने का प्रश्न है। तो तीसरा जो आचार है वो है चारित्राचार, यानी कांडक्ट, यानी हम जो नहीं करना है उसे हम छोड़े, अहिंसा की पालना। तो चारित्र की जो साधना है वो है अहिंसा की पालना। तो साधु होते हैं वो पूर्ण महाव्रत का पालन करने की कोशिश उनकी होती है, और जो श्रावक होता है वो अणुव्रत की पालना करते हैं। जितना साधना वो, जितनी अहिंसा की पालना वो कर सकते हैं उतनी करते हैं। तो अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान ने अहिंसा की साधना की, तो आचरण का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें षड्जीव निकाय का कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति और त्रस्जीव, इसमें जीवत्व है। जब तक हमने जीव और अजीव को नहीं समझा, हम अहिंसा को भी नहीं समझ सकते। हम बहुत बड़ी बड़ी अहिंसा तो नहीं करते, जैसे सिटीजनशिप का जब आता है आपको साइन अप करने के लिए, तो किसी ने कहा कि समी जी मैं ऐसे साइन कर रहा हूँ कि अगर युद्ध हुआ तो आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन वॉर बिकॉज इट इज अगेंस्ट माई रिलीजन। आई थॉट कि भाई चलो इतना अवेयरनेस है कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे, यू मेड एन कॉन्शियस डिसीजन एट द टाइम यू वर साइनिंग अप फॉर द सिटीजनशिप। प्रश्न ये है कि जो बाहर का युद्ध है वो तो हमको दिख गया, भीतर का जो युद्ध चलता है उसे हम रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं? भीतर का जो संघर्ष है उसको हम छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ पाते हैं? इट कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर किड्स, इट कुड बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, इट कुड बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर ओन सेल्फ। युद्ध कभी कभी अपने साथ भी होता है, एक मन कहता है कि यहाँ ये करना है, दूसरा मन कहता है कि छोड़ो ना, युद्ध होता है ना, युद्ध में जीतता कौन है? तो चारित्राचार जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है साधना का, कि हमारे भीतर वीटो पावर कितना है। हम वीटो पावर दूसरों के ऊपर तो लगाते हैं, आपको ये नहीं करना है। कोई भी, जैसे एक छोटी सी पार्टी थी, पत्नी ने देखा कि पति मिठाई खा रहे हैं, तुरंत उसने टोक दिया कि आपको मिठाई नहीं खानी, डायबिटीज है ना। और उसने बाद उसने क्या किया, उस पीस को अपनी प्लेट में ले लिया। तो पति भी कम तो चुप तो रहने वाले नहीं थे, उसने कहा कि तुमको भी मिठाई नहीं खानी है? तो उसने कहा कि मेरे को डायबिटीज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको डायबिटीज हो नहीं इसलिए नहीं खानी है। अब कहीं ना कहीं हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट देन डू वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर ओन सेल्फ? कि भाई मैंने ये कमिटमेंट किया है कि पॉल्यूशन है तो मुझे ये पालन करना है, एंड डू वी मेक अप कीप अप विद आवर रेजोल्यूशंस, डू वी कीप अप विद, क्योंकि हमारे भीतर एक तड़प तो है, तड़प है तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स भी करते हैं, डू वी एग्जीक्यूट आवर प्लान्स? तो हमको एनालिसिस करना है। पॉल्यूशन में हम प्रतिक्रमण सुनते हैं, अगर सेल्फ एनालिसिस कितना हो पाता है मुझे नहीं पता। हम डू वी रियली लाइक थिंक ओवर कि मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़ी की है? लाइक संबंध में तो गड़बड़ी दिख जाती है, क्योंकि भाई मैंने बोला है तो मुझे भी याद है, उसको भी याद है, समझता होना तो करना ही पड़ेगा, वो मैं भूल जाऊंगी वो व्यक्ति तो नहीं भूलेगा। बट डू वी रिमेम्बर द कॉन्फ्लिक्ट विच वी हैड इट विदिन, वी हैव इट विदिन आवर सेल्फ? हम बहुत सारी बातों को गांठ बांध करके चल लेते हैं, डू वी रिलीज देम आउट? तो ये जरूरी है कि हम चारित्र की आराधना करें, हम ऐसी चीजों का संयम करें। आचार्य श्री तुलसी ने तो यहाँ तक कहा कि संयम ही जीवन है, अगर हमारे भीतर संयम है तो हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। और आज जितना असंयम बढ़ा है, जितना कंज्यूमरिज्म है, कल क्लास में चर्चा चल रही थी कि फूड के बारे में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे तो नहीं थे बट फिर भी, लाइक इवन लाइक हैविंग 5 स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स एंड सेइंग वी डू नॉट यूज माइक्रोवेव, दैट वाज रियली गुड। कि नहीं वी गो विदाउट इट, वी यूज डिफरेंट अदर टूल्स. तो एक अवेयरनेस है उनमें कि हमारे लिए क्या हिटकर है क्या हिटकर है. 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा लगता है कुकिंग में, माइक्रोवेव में तो इंस्टेंट होता है, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता. बस उसमें सम क्वेश्चन. ओके सो द की इज कि हम अपने भीतर में संयम की कितनी आराधना कर पाते हैं, करते हैं. जैसे अभी पॉल्यूशन चल रहा है, आप खाना लिमिटेड टाइम तक ही खाते हो, बीच में आप कई घंटे नहीं खाते हो, तो यू कैन जस्ट मेक अ रेजोल्यूशन दैट आई एम नॉट गोइंग टू ईट फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम. जब त्याग हो गया तब सामने खाना आएगा, फिर भी हम खाएंगे नहीं. चाय आएगी, चाय जैसे ही सामने आती है तो लगता है कि थोड़ा सा पी लेते हैं, राइट. थोड़ी छोड़ देंगे, थोड़ा तो चले जाएगा अंदर. बट देन इफ यू हैव अ बाधा त्याग कर लिया तो यू हैव यू गेट एक्चुअली स्ट्रेंथ टू स्टॉप योर सेल्फ. तो संयम जो है वो सुरक्षा कवच है हमारे जीवन के लिए भी और आत्मा के लिए भी. तो तीसरा हुआ चारित्राचार, चौथा हुआ तपाचार. भगवान ने तप की आराधना की, तपस्या भगवान के जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है. मुझे नहीं पता अभी तपस्या किसी के चल रही है क्या. तो पर्यूषण में तो तपस्या का माहौल पूरा बनता है, एक्चुअली फुल फ्लेज चल सकता है. अच्छा अभी जो कर रहे हैं वो अपना मनोबल स्ट्रांग रखिए और देखिए कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं. तो तपस्या भगवान के जीवन का बहुत काइंड ऑफ विजिबल कॉन्सेप्ट है, जो जैनों की पहचान भी है कि भाई तपस्या से जैनी पहचाने जाते हैं. किंतु भगवान की तपस्या केवल आहार छोड़ना, आहार विजय भगवान की साधना का एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है. भगवान ने जो साधना की वो आहार विजय की साधना की, निद्रा विजय की साधना की, तीसरी है तितिक्षा विजय. तितिक्षा मतलब सहन करने की साधना. भाई कोई चीज अच्छी बनी या बुरी बनी, अच्छी हुई या अच्छी नहीं हुई, कोई काम सही हो गया कोई काम गलत हो गया, मौसम साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, काम टाइम पे हुआ नहीं हुआ. वी गो थ्रू ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. भगवान के सामने चंद्र कौशिक आया, उसने डंक लगाया, राइट. और फिर इंद्र आए और उन्होंने वंदना की. अब डंक लगाते समय न दुख है, इंद्र के वंदना करने के समय न सुख है. भाई कस्टमर बहुत बढ़िया मिल गया, बहुत खुशी हो गई, और एक दिन खाली चला गया तो लगता कि अरे आज तो कुछ हुआ ही नहीं. तो हम संतुलित रहे, न्यूट्रल रहे, ये तपाचार का भी हिस्सा है कि हम समता की जो साधना है. भगवान ने कहा समया धर्म उदाहरे मुनि, समता धर्म मूल है हमारा. तो जो समता की तपस्या के पीछे जो भगवान का उद्देश्य था वो था ध्यान. ध्यान में लीन थे तो भूख नहीं लगी, ध्यान में लीन थे तो खाना याद नहीं आया, ध्यान में लीन थे तो उनको खाने की शक्ति, खाने से जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं चाहिए थी. साधना जो करता है व्यक्ति उसका खाना अलग होता है, जो आप व्यक्ति का खाना होता है वो साधक के खाने से अलग होगा. तो भगवान की जो का आहार था वो उनको वैसे ध्यान से ही मिल रहा था. तो ध्यान और तब भगवान का एक ही सिक्के के दो पहलू थे. अब हम जब तपस्या करते हैं तो कितना ध्यान करते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, ये भी हम ध्यान रखें. उपवास का मतलब है अपने निकट, उपवास, वास यानी बैठना, अपने निकट बैठने को उपवास कहते हैं. तो हम उपवास में अपने निकट कब कितना आते हैं वो हम ध्यान रखें. वो हो गया हमारा चारित्राचार, तपाचार. और भगवान ने यहाँ तक किया, जब भगवान ने चंदनवाला की घटना को हम जानते हैं, चंदनवाला राजकुमारी थी और फिर वो दिक भी गई, कितने जीवन के दुख उसने झेले हैं. और भगवान ने क्या किया, संकल्प ऐसे किया कि चंदनवाला के हाथ से पाने हुए. क्या जरूरत थी भगवान को ऐसे करने की, तपस्या तो किसी भी दूसरे रूप में भी कर लेते. भगवान का तप उन्हें आत्मशुद्धि का आलंबन तो था ही, चंदनवाला को तो तारना था ही, पूरा समाज भी तरा उससे. क्योंकि जब ये पता चला कि भगवान इतने दिन से गोचरी जा रहे हैं और आहार नहीं ले रहे हैं, और फिर जब आहार लिया तो किसके हाथ से लिया, एक दासी के हाथ से लिया, अरे ये क्या, हम तो राजा थे, रानी थे, हमारे हाथ से आहार लेते, नहीं दासी के हाथ से लिया। जब ये पता चला फिर खोज हुई कि वो दासी कौन है। अरे वो दासी तो राजकुमारी है, राजकुमारी दासी कैसे बन गई? तो जब समाज में जो कुरूढ़ियां चल रही थी उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, एक अवेयरनेस आई कि किस तरह से राजा युद्ध करते हैं और किस तरह से व्यक्ति का जीवन शोषित होता है। तो वो एक पूरी समाज में एक अवेयरनेस आई, राजा रानी चंदन वाला सभी ने दीक्षा ली, तो सबको तारना था और भगवान ने वो संकल्प किया। तो तपस्या तिन्नाणम तार्याणम के लिए भी हो सकती है। और जो अंतिम सूत्र है वो है वीर्याचार, हम वीर की साधना करें। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आगम में आया है कि वीर्य का गोपन नहीं होना चाहिए। वीर्य का मतलब शक्ति, हमारे भीतर शक्ति है कुछ करने की और हम नहीं करते हैं, ये भी एक सिन पाप माना जा सकता है, ये भी एक बाधा है तब साधना में। अब शक्ति का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाए? चंड कौशिक थे, उन्होंने अपनी शक्ति को जहर उगलने में लगाया, कितना प्रयत्न किया, भगवान को डंक लगाया एक बार दो बार, सारी शक्ति को बटोर करके फिर तीसरी बार प्रहार किया कि भगवान अभी तो विचलित हो, क्या हुआ? नहीं हुए भगवान विचलित। तब भगवान ने कहा चंद्र कौशिक को, शांत हो जाओ चंद्र कौशिक। और तब चंद्र कौशिक ने अपनी शक्ति कहाँ लगाई? अपनी आंखों देखने के लिए, ही इंटरनलाइज हिमसेल्फ। और उसी शक्ति को जब उन्होंने आत्म स्वयं के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया तो वो शक्ति का की राह बदल गई। तो हम हमारे भीतर भी शक्तियां बहुत हैं, हम उस शक्ति को संसार की ओर फोकस करते हैं, डिस्ट्रैक्शन में अट्रैक्शन रखते हैं, या हम डिटैचमेंट में अट्रैक्शन रखते हैं। हमारा जो शक्ति का नियोजन होता है वो किस ओर होता है? संसार की बातों में आनंद आता है, आपके जो टीवी शोज चलते हैं आजकल, मैंने सुना कि इंडिया के शोज बहुत होते हैं और वो कैसे होते हैं यू ऑल नो राइट, और उसमें भी आनंद आता है, आता है कि नहीं आता है? तो हमारे पास वो अगर एक घंटा है और हमारे को वो शो देखना है और माला भी करनी है, तो पहले तो शो ही देखेंगे फिर माला होगी, टाइम होगा तो नींद नहीं आएगी तो फिर माला के लेके बैठ जाएंगे। तो हमारे भीतर जो शक्ति है, हमारे पास जो समय है, उसमें हम अपने आप को कैसे नियोजित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो हम वीर्याचार की साधना करें, शक्ति का गोपन नहीं हो, शक्ति को हम छुपाएं नहीं, उसका विस्फोट होना चाहिए। कहते कहते ना कि एक धमाका होना चाहिए, जैसे कभी कोई स्पेशल इवेंट होता है तो हम लोगों का ये रहता है कि भाई कुछ स्पेशल होना चाहिए, एक धमाका होना चाहिए, लगना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में कुछ हुआ है, हमारी कम्युनिटी ने संवत्सरी मनाई है। तो वो धमाका कब होगा? जब हमारे भीतर का जो वीर्य है उसको हम जगाएंगे, हमको हम उसको एक नई दिशा देंगे। तो हम भगवान ने जो साधना की, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार की साधना की, हम संवत्सरी में इसमें से क्या कितना कर पाते हैं ये हमको अवेयरनेस के साथ, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हो सकते हैं जो आप कर सकते हो, इट्स मियर अवेयरनेस कि हम इसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, जिए। जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतनी ही हमारी साधना में प्रगति होगी। तो शुभकामना करते हैं कि हम इस पंचाचार की साधना से आत्मारोहण करें।
यदि ये चेतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रोह्य जय जनिल सन्तोन्तरहिता साक्षी मार्ग सकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। सम्मी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, पर्युषण पर्व विशेष रूप से धर्म की आराधना का पर्व है और
धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दार्शनिकों से जब पूछा गया कि धर्म क्या चीज होती है, दर्शन अपने ढंग से हर चीज को डिफाइन करता है। एक धार्मिक व्यक्ति, रिलीजियस व्यक्ति अलग तरह से उसको डिफाइन करता है, एक सामाजिक व्यक्ति उसको अलग तरह से डिफाइन करता है। गीता को पढ़ेंगे विशेष रूप से तो आपको धर्म का अर्थ है सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक ड्यूटी, सोशल ड्यूटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्लिगेशन। तो वहाँ धर्म का अर्थ है सामाजिक कर्तव्य। युद्ध लड़ना आपका धार्मिक व्यक्ति का काम नहीं है, सामाजिक व्यक्ति का काम है। जब समाज में रहेंगे, किसी देश में रहेंगे, उसके देश की सुरक्षा का दायित्व तो एक सामाजिक व्यक्ति का होता है। किंतु एक साधु युद्ध लड़ने लगे तो फिर अहिंसा धर्म की स्थापना कौन करेगा, अहिंसा धर्म का महत्व तो कैसे समझ में आएगा। तो धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति की कुछ कुछ कर्तव्य अलग अलग होते हैं। जो कर्तव्य सामाजिक व्यक्ति के होते हैं वो सारे साधु के हो, ये जरूरी नहीं है। और ताया करके जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, उनके बिल्कुल कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है। वो सामाजिक रूल्स, रेगुलेशंस और ऑब्लिगेशन से बंधे हुए नहीं होते हैं, वो उनसे मुक्त होते हैं। तो धर्म की परिभाषा जब दर्शन क्षेत्र में पूछी जाती है तो दार्शनिक लोग उसको धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। हर वस्तु का अपना एक नेचर होता है, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है, उसके अपने प्राकृतिक गुण होते हैं, उसके अपने नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, वही उसका धर्म होता है। नींबू का धर्म क्या है? नींबू जो टेस्ट देता है वो इसका धर्म है। हर पदार्थ का इसी तरह से अपना अपना एक टेस्ट होता है, उसके अपने गुण धर्म होते हैं, वही उसका नेचर होता है, वही उसके नेचर को डिफाइन करता है और वही उसका धर्म भी है। तो आत्मा का जब धर्म की बात होती है तो आत्मा का धर्म क्या है? क्षमा, मुक्ति, आर्जो, लाघव आदि जो 10 धर्मों की चर्चा की जाती है पर्युषण के दौरान, ये सब आत्मा के धर्म है, ये आत्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव की आराधना ही धर्म कहलाती है। इसलिए धर्म कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई रिचुअलिस्टिक चीज नहीं है जिसको कोई चाहे तो करे, न चाहे तो न करे। धर्म आत्मा का स्वभाव है, अपना निजी नेचर है, और हर वस्तु अपने स्वभाव के नजदीक जितनी रहती है उतनी ही वो शांत रहती है, प्रसन्न रहती है और फुल ऑफ एनर्जी रहता है। किंतु अगर दूसरी चीज के साथ जैसे ही वो मिक्स होती है तो उसका जो प्योर नेचर है वो एक तरह से डाइल्यूट हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, रियल और नेचुरल फॉर्म में वो वर्क नहीं करता और उतना फिर वो इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो अधर्म एक प्रकार से आत्मा का शुद्ध नेचर है, शुद्ध नेचुरल क्वालिटीज हैं जिनको हम धर्म के रूप में जिसका अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं। सांसारिक आत्मा का संबंध केवल शुद्ध आत्मा के साथ में नहीं है, शरीर के साथ वो जुड़े हुए हैं, मन के साथ जुड़े हुए हैं, भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे वैभाविक तत्व हैं जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और ये आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप है उसको पोल्यूट करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। वो अपने रियल नेचर में रह नहीं पाती है और बार बार ऐसे विभावों में चली जाती है जो उसको अपने स्वरूप से बहुत बार दूर ले जाते हैं और वही उसके अशांति के, उसके दुख के, उसकी समस्या का कारण बनते हैं। तो इसलिए धर्म करने का मतलब है कि आप अपने रियल नेचर, जो अपना प्योर नेचर है, उसके नजदीक आने की कोशिश करो। वही वास्तव में मूल शांति ही देगा, वही आपको आनंद देगा, वही आपकी मूल शक्ति है, उसी का मूल में प्रभाव है। और तो बाहरी चीजें हैं, जितना आप अर्जित करेंगे उसका एक टाइम बीइंग के लिए, एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसके अपने सोशल जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से आपको उस सोसाइटी में स्थान मिल सकता है, किंतु वो परमानेंट पैरामीटर्स नहीं है, वो परमानेंट स्टैंडर्ड्स नहीं है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। तो धर्म आत्मा का मूल स्वभाव है, और स्वभाव में व्यक्ति जितना सुखी रहता है, जितना शांति का अनुभव करता है, जितना आनंद का अनुभव करता है, उतना वो विभाविक जगत में कितना भी चला जाए उतना वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। एक बच्चा समुद्र के किनारे खड़ा था, अमावस्या का टाइम था, ज्वार भाटा का समय था, क्योंकि अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी ये तिथियां अधर्म तिथियां मानी जाती है, परंतु शिष्ट भाषा में इनको धर्म तिथियां कहा जाता है। ये वैसे हैं अधर्म तिथियां। इस समय जल पर पानी का, जल के ऊपर चंद्रमा का कुप्रभाव पड़ता है और जल तत्व उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसीलिए समुद्र में पानी ऊंचे से उछलता है, अपनी सीमाओं को क्रॉस कर देता है। तो उसी तरह से इन तिथियों के दिनों में इसीलिए हरियाली को वर्जन करने की बात कही जाती है, क्योंकि हरियाली में पानी जल तत्व रहता है। हमारे शरीर में भी 70% जल तत्व बताया जाता है, अन्य सभी तत्व होते हैं किंतु पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर इन तिथियों पर हम हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने शरीर में जल की मात्रा को ऐड करते हैं, और इस समय ग्रह का, विशेष रूप से चंद्रमा का, जल तत्व पर कुप्रभाव चलता है। तो अगर जल तत्व की मात्रा हमारे शरीर में होगी तो उससे भी हमारा मन भी प्रभावित होगा, हमारे अंदर ऐसे विचार पैदा हो सकते हैं जो कि हमारे लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जैन परंपरा में इन तिथियों पर हरियाली के वर्जन की बात कही जाती है कि सब्जियों का, हरी सब्जियों का इस दिन वर्जन किया जाए, कम से कम प्रयोग किया जाए, स्पेशली 8 दिन पर्यूषण के दौरान तो कम से कम हम इसे छोड़ सकते हैं। तो जल तत्व के द्वार पर होने वाले कुप्रभाव को रोकने के लिए ये कुछ धर्म की मर्यादाएं की जाती है कि मन को हम कैसे पवित्र रख सकते हैं, भावनाओं को कैसे पवित्र रख सकते हैं, और बाहरी तत्व तो कौन से ऐसे हैं जो कि हमारे मन को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, उनको हम कैसे रोकें, और इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। लोग इसको रूढ़ी समझ लेते हैं, इनकी उपयोगिता नहीं समझते हैं, और हर दिन ही सोचते हैं कि हरियाली खाना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो एक, हम एक लिमिट में हर चीज अच्छी है किंतु एक लिमिट के बाहर सब चीज ही खराब है। हम एक कार में, गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइवर सिगरेट पी रहा था, तो उन्नत प्रज्ञा जी ने कहा कि तो ये सिगरेट पीना जरूरी है क्या? तो बोले कि जरूरी तो कुछ नहीं है, तो बोले कि फिर इसको छोड़ सकते, तुम जानते हो इससे कितनी हानि होती है। बोले मैं जानता हूँ कि तो हर चीज ही हानिकारक है, आप कुछ भी खा लो, केवल सिगरेट ही क्यों, कोई भी चीज खा लो, हर चीज लिमिट से ज्यादा खाओगे तो वो सबको ही हानि पहुंचाएगी, चाहे आप बादाम का सीरा खा लो, चाहे सिगरेट पी लो। और उसने कहा कि मेरे दादा सिगरेट पीते थे, उनकी उम्र जो थी 100 से अबव थी, और पूरे जीवन भर स्वस्थ रहे, उनको कोई मेडिसिन लेनी नहीं पड़ी, उनका अपना विश्वास था कि सिगरेट एक लिमिट में भी पी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट समहाउ जो भी उनका लॉजिक था, कहने का मतलब है कि लिमिट से बाहर कोई भी चीज, आपको चाहे हरी सब्जी खाओ चाहे कोई चीज खाओ, शरीर में भी उसकी एक उचित मात्रा की ही जरूरत होती है। अगर उससे ज्यादा हम खाते हैं तो वो कोई शरीर उसको भी स्वीकार नहीं करता है, उसके कुछ और चीजें उससे जनरेट होती है। तो केवल हम शरीर पर ही ना ध्यान दें, हमारे शरीर के अंदर मन भी है, भावनाएं भी हैं, कुछ चीजें मन को प्रभावित करती हैं, कुछ चीजें भावनाओं को प्रभावित करती हैं, और वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बनती है। तो हम केवल शरीर पर अटक करके ही सारे धर्म की परिभाषा को समझने की कोशिश न करें। धर्म के रूल्स और रेगुलेशन सारे शरीर को आधार बना करके नहीं बनाए गए हैं, ज्यादा उनका संबंध भावनाओं के साथ में है, और विशेष रूप से जैन धर्म का जो संबंध है वो भाव के साथ में है। भाव से धर्म होता है। आप यहाँ बैठे साधु को दान नहीं दे सकते हैं, किंतु आप अगर भावना करते तो आपको उतना ही लाभ मिलता है। यहाँ बैठे भी भावना कर सकते हैं। आचार्य श्री तुलसी थे, एक विदेशी ने उनको पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने 12 व्रतों की बात कही कि मैं जैन धर्म के 12 व्रतों पर बड़ी आस्था करता हूँ और मैं उसका पालन करता हूँ। आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हारे इस विदेश में तो कोई साधु नहीं है, तुम 12 व्रत कैसे पालन करते हो? तो बोले कि जैन धर्म में भाव प्रधान धर्म माना गया है, तो मैं जब भी खाने बैठता हूँ प्रतिदिन ये भावना करता हूँ कि मेरा कब ऐसा योग मिले मेरे घर पे साधु आए, मैं अपने खाने के थाल में से उनको दे और मेरा ये व्रत 12वां व्रत लीजिए, इस तरह की मैं प्रतिदिन भावना करता हूँ। मैं भावना से उस 12वें व्रत का पालन करता हूँ। तो भावना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण तत्व वही है। शरीर से कोई कुछ कर पाए ना कर पाए, तपस्या कर पाए ना कर पाए, किंतु अगर भावना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, इच्छा करते हैं, उससे भी लाभ हो जाता है और कभी कभी बहुत अधिक लाभ हो जाता है भावना करते करते ही। भगवान महावीर जब चंदन वाला का पालना वो हुआ नहीं था, वो क्या चंदन वाला के हाथ से उन्होंने पालना नहीं लिया था, केवल वो प्रतिदिन अभिग्रह के कारण से शहर में जाते थे और उनके अभिग्रह फलित नहीं होते थे तो वापस लौट जाते थे। उस समय एक सेठ कहा जाता है, जीर्ण नाम का एक सेठ था जो कि भगवान महावीर के प्रति बहुत आस्था रखता था, बहुत श्रद्धा थी। उसको पता चला कि भगवान महावीर की तपस्या चल रही है, 4 मास से भी अधिक हो चुके हैं, अभी तक उनका पालना नहीं हुआ है। तो वो प्रतिदिन ये भावना भाता था कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि भगवान महावीर मेरे द्वार पर आए, मेरे घर पर आए और मुझे उन्हें दान देने का मौका मिले। तो प्रतिदिन की इतनी भावना भाते 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 एक दिन जिस दिन उनका पालना होने वाला था, तो कहा जाता है कि वो भावना भा रहा था किंतु उसी बीच में देवदुंदु भी हो गई। भगवान महावीर का पालना चूंकि चंदन बाला के द्वारा हो चुका था तो वो देवदुंदु भी से उसको आवाज से पता चला कि पालना हो चुका है। वो भावना भा रहा था, बस थोड़ा सा भावों की उत्कृष्टता और बढ़नी थी, बाकी रह गई थी। तो कहा जाता है कि उसने भावना से इतनी आंतरिक पवित्रता को इतना बढ़ा लिया था कि अगर थोड़ी देर और भावना भाता तो उसे केवल ज्ञान हो सकता था। तो घर बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, केवल भावों के द्वारा इतनी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। तो जैन धर्म इसी बात पर बल देता है कि हमारे भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। अगर भावधारा शुद्ध है तो भाव ही विचारों को प्रभावित करते हैं। जैसा भीतर में भाव होता है हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर राग द्वेष की भावनाएं ज्यादा है, राग द्वेषात्मक चित्तवृत्तियां है, विचार भी वैसे ही हो जाएंगे और उसका प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ेगा, फिर हमारे व्यवहार भी वैसे ही हो जाएंगे और जैसे व्यवहार होंगे उसका बाहरी प्रभाव भी वैसा ही होगा, बाहरी जगत में हमारा व्यक्तित्व भी उसी रूप में सामने आएगा। तो मूल भाव है कि भावों को हम कैसे शुद्ध करें। तो जैन धर्म शुद्धता पर बल देता है, भावनाओं की शुद्धि पर बल देता है और इसीलिए इसको वीतराग धर्म कहा जाता है। ये वीतराग धर्म का प्रतिपादन करता है, राग और द्वेष से मुक्त होने की बात करता है। वो आंतरिक कषाय जब तक नहीं मिटे, बाहर से हम बहुत उपचार करते रहे, बाहर से बहुत साधनाएं करते रहे, उसका भी बहुत लाभ है, वो निरर्थक नहीं है, किंतु हमें मूल तत्वों पर ध्यान देना है। एक गांव में एक कुआं था, उस कुएं के अंदर 4 कुत्ते के पिल्ले खेलते खेलते गिर गए लड़ते लड़ते, क्योंकि पिछले पुराने समय में कुएं जो है जमीन से लगे हुए प्राय करके होते थे। और आज भी अगर आप राजस्थान में जाएं तो बहुत सारे गाँव में कुएं जो है जमीन से लगे हुए ही हैं। कोई भी बच्चा भी गिर सकता है, कोई कुत्ते भी गिर सकते हैं, कोई पशु भी निकलते हुए गिर सकता है उसके अंदर। इसलिए या तो उनको पत्थर रखना पड़ता है, कुछ कांटे की बाट रखनी पड़ती ताकि कोई नजदीक ना आए। तो पिल्ले गिर गए, गांव वालों के लिए वो एक ही कुआ था जिससे अच्छा उनको जल मीठा या शुद्ध जल उनको प्राप्त होता था। गाँव वालों के लिए बड़ी समस्या हो गई, कुआ बहुत गहरा था, अंदर में क्या गिरा है पता नहीं चल रहा था और पानी निकालो तो बहुत दुर्गंध आ रही थी, पीने की बहुत समस्या हो गई। गाँव में एक सिद्ध योगी आए, लोग चूंकि गाँव के लोग भोले भाले पढ़े लिखे होते नहीं है तो वो सोचते चलो योगियों से हमें पता चल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, हमारा समस्या का समाधान हो जाए। तो सिद्ध योगी के पास में गए तो उसने अपने ज्ञान से देख लिया कि उसके अंदर कुछ कुत्ते के पिल्ले गिरे हुए हैं, पर उसने अपने पहले उनको मंत्र दिया कि तुम ये मंत्र पानी, मेरे पास मंत्रित पानी है, इस पानी को ले जाओ, इसको डालो, देखो क्या होता है। पानी डाला किंतु देखा कि पानी में कोई फर्क नहीं आ रहा, वैसे ही दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अंदर में कुछ पशु कुत्ते के बच्चे गिर गए हैं, जब तक तुम उनको नहीं निकालोगे तो बाहर से तुम कितना ही पवित्र जल डालते रहो वो अंदर जाके वापस दूषित हो जाएगा, क्योंकि अंदर में विकार पड़ा हुआ है। तो जब तक आंतरिक विकृति आपकी दूर नहीं होगी, बाहर से हम मंत्र तंत्र शास्त्र कुछ भी पढ़े,
किंतु वो भीतर में जाएगा तो फिर वापस वैसी उसकी परिणति हो जाएगी। तो भीतर की शुद्धि जरूरी है। अगर भीतर में शुद्ध हो गया तो बाहर से आप जो भी डालेंगे उसका रिजल्ट जो है वो सही आएगा, वो स्थायी भी होगा, वो टिकेगा भी सही, और उसकी जो परिणति आप चाहते हैं, जो परिणाम देखना चाहते हैं, जो उसका फल चाहते हैं, वो फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो भगवान महावीर ने इसीलिए कहा कि धम्मो शुद्धस्य चित्तैः, जिसका हृदय शुद्ध होता है, जिसकी भावनाएं पवित्र होती है, जिसके विचार पवित्र होते हैं, जिसके आचरण और व्यवहार पवित्र होते हैं, धर्म उसी के जीवन में टिकता है। नहीं तो वो आता तो है कुछ समय के लिए, फिर चला जाता है, वो टिकाऊ नहीं बनता है। जब तक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तब तक धर्म का टिकना मुश्किल है, उसे जाना पड़ता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में आप अगर हिंदू शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनके राम के शिव के जीवन को अगर देखें, तो आसुरी शक्तियों का और देवीय शक्तियों का बहुत बड़ा संघर्ष बताया जाता है। तो कहा जाता है कि जैन कुछ स्कॉलर्स का लोगों का ये कहना है कि जिनको असुर कहा गया वास्तव में वो असुर नहीं थे, वो अहिंसा धर्म में विश्वास करने वाले लोग थे, जो कि जैन धर्म में विश्वास करने वाले थे। किंतु जब वैदिक ऋषि जो कि यज्ञ कर रहे थे और जिसमें पशु बलि वगैरह दी जाती थी, उसका वो विरोध करते थे, इसलिए उनको असुर मान लिया उन लोगों ने, क्योंकि उनके धर्म का जो क्रियाकांड था, यज्ञ जो पशु बलि वगैरह से संबंधित यज्ञ थे, उनका विरोध जब वो करते थे तो उनको वो अपने से विपरीत मान लेते थे, और इसलिए असुर समझ करके उनके साथ में उनकी लड़ाई चलती थी। किंतु कहा जाता है कि वो असुर जो भी रहे हों, जो भी व्यक्ति उस समय के रहे हैं, जिन्होंने भी जब तक वो धर्म का पालन करते रहे, जैन धर्म में विश्वास करते रहे, अच्छा आचरण उनका रहा, तब तक वो बहुत संपन्न रहे, दूसरों से पराजित जल्दी से नहीं हुए। किंतु जैसे जैसे उनके जीवन में विकृति आनी शुरू हुई, वैसे वैसे उनकी पराजय होती चली गई, और फिर जो देव संस्कृति या यज्ञ संस्कृति है वो भारत में स्थापित हो गई। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब तक धर्म रहता है, शुद्ध आचरण रहता है, तब तक ही व्यक्ति के साथ धर्म रहता है, और धर्म के साथ ही विकास विकास भी होता है। विकास का आधार भी धर्म है। अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो सामाजिक स्तर पर भी हम विकास नहीं कर सकते हैं। अहिंसा अगर हमारे भीतर नहीं है तो हम एक साथ बैठ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ मिलकर के रह नहीं सकते, किसी सभ्य और सुस्त समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पशुओं का समाज समाज नहीं कहलाता है, क्यों? उसको समझ कहा जाता है। मनुष्यों के समाज को समाज कहा जाता है, समुदाय को, और पशुओं के समुदाय को समझ कहा जाता है। एक ही मात्रा का फर्क है, समझ और समाज। पशु का समाज क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना नहीं जानते हैं। जब उनकी कोई अपेक्षा होगी तो वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी पर अटैक कर सकते हैं, उनको उस चीज का विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किंतु मनुष्य के अंदर विवेक होता है, इसलिए वो एक दूसरे को समझ सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को भी समझ सकता है, उनके विचारों को भी समझ सकता है, उनकी आवश्यकताओं को भी समझता है, और उसके अनुसार व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था मनुष्य के लिए संभव है, किंतु पशुओं के लिए नहीं, संभव नहीं है। तो ये अहिंसा की चेतना अगर मनुष्य के भीतर ना हो तो ना तो वो सुसंगठित एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, और ना आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ सकता है। तो अहिंसा न केवल हमारे आध्यात्मिक उन्नति का आधार है, जो कि धर्म का मूल पक्ष है। जब महावीर से पूछा गया कि धर्म क्या चीज है, आप धर्म करने की बात करते हैं, धर्म का इतना महत्व बताते हैं, तो दशविकालिक में कहा गया है, अहिंसा संयमोतव धम्मो मंगल मुक्तिम, अहिंसा संयमोतव धर्म विश्व में, दुनिया में सबसे उत्कृष्ट वस्तु है जिसको पाना चाहिए हर इंसान को। और वो धर्म क्या है? तो अहिंसा धर्म है। हिंसा धर्म नहीं है। हिंसा समाज की आवश्यकता हो सकती है, जीवन की आवश्यकता हो सकती है, किंतु वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म का संबंध अहिंसा के साथ नहीं। जहाँ अहिंसा वहां धर्म, जहाँ हिंसा वहां धर्म नहीं कहा जा सकता है। तो महावीर ने अहिंसा को धर्म कहा। ये अहिंसा धर्म केवल आध्यात्मिक उन्नति का आधार नहीं है, अपितु सामाजिक प्रगति का भी आधार है। और आज जब विश्व विकास की बहुत आगे निकल चुका है, किंतु साथ साथ में जो हिंसाएं बढ़ रही है, जो आतंकवादी प्रवृत्तियां विकसित हो रही है, उससे यही महसूस किया जा रहा है कि हम विकास की कितनी भी डगर आगे निकल जाएं, हमको अंततोगत्वा अहिंसा को समाज की शांति का आधार बनाना होगा, विश्व शांति का आधार बनाना होगा। बिना अहिंसा के हम जो भी प्रगति करेंगे वो एक दिन नष्ट हो सकती है, वो समाप्त हो सकती है। तो अहिंसा को समझना विश्व शांति के लिए आज बहुत जरूरी हो गया है। जहाँ ग्लोबलाइजेशन का युग आ गया है, बहुत डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है, वहाँ अगर एक दूसरे के साथ शांति से प्रेम से जीना है तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ अहिंसक व्यवहार करें, एक दूसरे के अस्तित्व का मूल्य समझें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखें और जो सही बात है उसके प्रति हमारा आस्था बनी रहे। तो अहिंसा धर्म का मूल तत्व माना गया है यही, और दूसरा तत्व जो है संयम माना गया है कि हर व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को समझे, अपनी सीमाओं को समझे, ये ना माने कि मैं धनी हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ किसी सत्ता में हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबकी अपनी लिमिटेशन होती है, सबकी अपनी मर्यादाएं होती है, सबकी अपनी सीमाएं होती है। कहा जाता है एक जॉक के रूप में कि भारत स्वतंत्र हुआ तो एक व्यक्ति ने ये मान लिया कि हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र है का मतलब है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सड़क पर लेट गया और कहने लगा कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अब हमारा देश पर हमारा अधिकार है, हम कहीं भी किसी भी रूप में रहें कोई रोक टोक नहीं सकता, हम पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो कोई व्यक्ति कार लेकर के निकल रहा था, उसने कहा कि देखो भाई सड़क तुम्हारी अकेले की नहीं है, स्वतंत्रता का ये मीनिंग नहीं है कि तुम सड़क पर आकर के सो जाओ, अपने घर में स्वतंत्र हो, तुम्हारा देश है इसलिए तुम अपने देश में प्रगति अच्छे से कर सकते हो, दूसरा तुम पर नियंत्रण नहीं करेगा, तुम्हारे व्यक्ति ही तुम्हारे देश का नियंत्रण करेंगे। किंतु स्वतंत्रता का ये तुम जो मीनिंग लगा रहे हो कि तुम चाहे जैसे जो चाहो सो कर सकते हो, तो ये ठीक नहीं है। बोले तुम ऐसा कैसे कैसे कह सकते हो, हमारा देश है, हम स्वतंत्र हैं, हम सड़क पर रहें चाहे घर में रहें। तो उसने कहा कि ठीक है फिर मैं भी देश का नागरिक हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी गाड़ी निकालता हूँ, कोई भी आ जाए रास्ते में मुझे क्या चिंता है। तो ऐसा अगर स्वतंत्रता का अर्थ निकाला जाए कि व्यक्ति अनियंत्रित रूप से चाहे जो करे उस पर कोई नियंत्रण न रखा जाए, तो फिर क्या होगा, हिंसाएं बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी और संघर्ष बढ़ेंगे। तो अपनी अपनी मर्यादाओं को समझना, संयम का मतलब यही है कि अपने ऊपर नियंत्रण करना, स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना, न कि दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना। आचार्य ऋषि की एक पुस्तक है धर्म के सूत्र, उसमें एक स्टोरी चल रही थी कि व्यक्ति एक सेठ भोजन के लिए बहुत लोगों को आमंत्रित करता है किसी प्रसंग पर। तो लोगों ने कहा कि भाई भोजन में तुमने जो सामग्री बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, बहुत सारे आइटम्स बनाए हैं, बाकी तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन तो बहुत संयमित है, तुम बहुत लिमिटेड द्रव्य खाते हो, हर कोई चीज खाते नहीं हो, किंतु लोगों के लिए तो तुमने हर तरह के टेस्ट की चीज बनाई है। तो उसने ये कहा कि देखिए संयम मेरा व्यक्तिगत चीज है, धर्म व्यक्तिगत होता है, वो दूसरों पर थोपने के लिए नहीं होता है, दूसरों की रुचि अलग प्रकार की होती है, मुझे जब मैं दूसरों को आमंत्रित कर रहा हूँ तो मेरा व्यक्तिगत जीवन का संयम मैं दूसरों पर नहीं लाद सकता हूँ, वो मैं खुद तो पालन कर सकता हूँ किंतु औरों को मैं जबरदस्ती पालन नहीं करवा सकता हूँ, इसलिए भोज में मैं उनकी रुचि के अनुकूल मैंने व्यंजन बनाए हैं। तो संयम व्यक्तिगत अनुशासन है, व्यक्तिगत नियंत्रण है, स्व पर नियंत्रण है, उसकी साधना का नाम ही संयम है। हम दूसरों पर नियंत्रण करते हैं, कानून लगाते हैं, नियम बताते हैं, रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, ये कोई संयम नहीं है। राजनीतिक लॉ हमारे ऊपर बहुत सारे लॉज लागू होते हैं, लीगल रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सोशल रूल्स रेगुलेशन होते हैं, फैमिली के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सोसाइटी के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये सारा धर्म नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। जिस समाज के अंदर रहना है हर व्यक्ति को एक सीमा के अंतर्गत रहना है, एक सीमा के अंतर्गत अपना काम करना है ताकि दूसरा उससे प्रभावित न हो। तो ये रूल्स रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़ते हैं, हम चाहे या ना चाहे, किंतु धर्म उस तरह के नियम नहीं है। आप अपनी इच्छा से नियम स्वीकार करेंगे और अपने लिए ही स्वीकार करेंगे, दूसरों को उससे प्रतिबंधित करने के लिए नहीं। तो संयम की साधना स्वनियंत्रण के लिए की जाती है। हम अच्छा पूर्वक कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ संकल्प स्वीकार करते हैं और वो व्यक्तिगत उन्नति का आधार बना करके करते हैं कि इससे मेरी आत्मा का विकास होगा। दूसरा इस और दूसरे को उससे लाभ होता ही है। हम अगर व्यक्तिगत जीवन में कुछ संयम करते हैं तो उससे दूसरों को भी बहुत सारा लाभ होता है। व्यक्ति अगर बहुत अधिक नहीं खाता है तो घर में बीवी को बनाना ही नहीं पड़ता है उतनी चीजें, किंतु अगर रोज के नई नई डिमांड हो तो उसको रोज ही चीजें तैयार करनी पड़े। तो दूसरे को असहज ही लाभ होता है, किंतु हम उस पर्पज से करें या ना करें, व्यक्तिगत जीवन में संयम कर रखने से खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, प्लस एक लिमिट होती है हर चीज की, और वो लिमिट हम अगर रखते हैं तो हमारी खुद के अंदर जो नियंत्रण की शक्ति है उसका विकास होता है। तो व्रत नियम जो धर्म के द्वारा प्रतिपादित होते हैं वो एक तरह से व्यक्तिगत इच्छाएं जो हैं अनियंत्रित जब हो जाती है तो वो मनुष्य के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है, उसके आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधक बन सकती है। इसलिए कुछ व्रत और नियम करवाए जाते हैं। वो व्रत और नियम व्यक्तिगत उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए और प्लस सामाजिक स्वस्थता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है संयम, और तीसरा है तपस्या। तपस्या को हम जनरली उपवास करना, ये करना, वो करना, ये तो तप है ही, किंतु एक व्यापक संदर्भ में देखें तो तपस्या का मतलब है कि विसर्जन करना सीखे। हमारे पास कुछ है, हम स्वयं भोग करते हैं, किंतु अगर वो किसी दूसरे के भी काम आ सकती है तो हम उसका विसर्जन करना भी सीखे। बहुत सारे लोग गरीब हैं इसलिए कि वो या तो कमाने में सक्षम नहीं है, उनके पास संसाधनों की कमी है, या उनको अनुकूल योग नहीं मिलता है, उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है, वो काम करना चाहते हैं किंतु जॉब ही नहीं है अवेलेबल, तो वो कहाँ से अर्न करें। तो ये कुछ लोगों का जो समाज में अमीर लोग हैं उन लोगों का दायित्व तो बन जाता है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास में जॉब नहीं है, कुछ करने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, वो कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत भोग की सीमा करके अपने अर्थ का विसर्जन औरों के उत्थान के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये तपस्या धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है जिसमें कि हम उपवास आदि तप का अनुष्ठान करते हैं, किंतु साथ साथ में तपस्या का अगर हम व्यापक अर्थ लें तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी चीजें जो कि दूसरों के लिए हम विसर्जित कर सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा सामाजिक स्वस्थता का विकास का बहुत बड़ा आधार बनता है, और व्यक्तिगत भोग की सीमा तो उसमें होती ही है। आपने आनंद श्रावक का उपासक दशा सूत्र अगर पढ़ा है जो कि भगवान महावीर का बोला हुआ एक आगम है जिसमें लगभग 10 श्रावकों का जीवन दिया है, और मैं सोचती हूँ कि 10 श्रावक एक प्रकार से भगवान महावीर के धनी व्यक्ति के समय के धनी व्यक्ति थे, बिलियनियर्स थे, और उनके पास व्यक्तिगत भोग की कोई कमी नहीं थी, संपदाएं प्रचुर थी, उसके बावजूद भी व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो बहुत लिमिटेड वस्त्र थे, ड्रेस कहा जाता है आनंद श्रावक के पास में 3 ही ड्रेसेस रखता था हार्डली, मेरे ख्याल से मेरे को तो जहां तक ध्यान है कि 2 ही, पर 3 रखी जाती है, और खाने के द्रव्य जो है बहुत व्यक्तिगत सीमित थे। तो व्यक्तिगत जीवन में बहुत सिंप्लिसिटी थी, पैसा कमाने का उसमें सामर्थ्य था, बहुत बड़ा उनका बिजनेस था, बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत सारी हजारों गायें थी तो बहुत दूध का प्रोडक्शन होता था, बहुत सारा घी वगैरह सब कुछ बनता था, तो वो चीजें घर में जब प्रोड्यूस होगी तो उसको बेचना भी होगा, उसके कारण से मनी भी आएगी, किंतु जरूरी नहीं है कि हम व्यक्तिगत जीवन में उन सबका उपयोग करें। जितना हमने कमाया है हम अपने ऊपर ही लुटाएं उसे, औरों के यदि काम आ सकता है, समाज के कुछ गरीब और असहाय लोगों को सहयोग कर सकते हैं तो उसमें भी मनी का विसर्जन किया।